آپ ہیں ایس بی ایس ہندی کے ساتھ اور خبروں کے لیے جائیں sbs.com.au/hindi پر۔
नमस्कार, आज रिपोर्ट की शुरुआत में बात कोरोना संकट की, जिसकी वजह से देश का स्वास्थ्य ढांचा बीमार सा हो गया है। रोजाना 3 लाख से अधिक नए मरीज सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से अस्पतालों में जरूरी सुविधाओं का अभाव हो गया है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों में अस्पताल ऑक्सीजन के संकट से जूझ रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन के अभाव में मरीजों की मौत को नरसंहार बताया है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। इस बीच दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में संक्रमण काबू में आता दिख रहा है। मध्य प्रदेश की स्थिति भी काबू में है। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहते हैं,
इससे बचा जा सकता है। पहली चीज हो ही ना, हो जाए तो छुपाए ना, ताकि तत्काल इसका इलाज कर सके। दिनों रात हम इस काम में लगे, कैसे जनता सुरक्षित रहे, जान बचे, संक्रमण को कैसे समाप्त करें। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे कहते हुए संतोष है कि मध्य प्रदेश में संक्रमण अब काबू में आ रहा है। संक्रमितों की संख्या स्थिर या धीरे धीरे घटने लगी है। स्वस्थ होकर घर जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए हम इसको काबू में पाएंगे, लेकिन आपका सहयोग चाहिए।
कोरोना कर्फ्यू की वजह से राज्य के कई लोगों का रोजगार छिन गया है। ऐसे लोगों की मदद सरकार खुद करेगी, इस बारे में शिवराज सिंह चौहान बताते हैं।
जब कोरोना कर्फ्यू लगाओ, रोजी रोटी की दिक्कत होती है, इसलिए हमने तय किया है 3 महीने का राशन, 1 व्यक्ति को 10 किलो अनाज, 5 सदस्य है तो 50 किलो अनाज महीने का, तो 2 महीने का 10-10 किलो 1 व्यक्ति को और 1 महीने का फिर 5 किलो, ये पूरा निशुल्क देंगे, ताकि गरीब भाई बहन को रोजी रोटी की समस्या ना आए, भरपेट भोजन कर पाए, गरीब की थाली खाली ना हो पाए।
दिल्ली में भी लॉकडाउन की वजह से गरीब वर्ग परेशान है। राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी को मुफ्त अनाज देने का वादा किया है।
सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले 2 महीने के लिए सबको राशन मुफ्त दिया जाएगा दिल्ली सरकार की तरफ से। तो जैसे पिछले साल हम लोगों ने किया था, पिछले साल भी जब लॉकडाउन लगा था तो दिल्ली के सभी ऑटो चालकों को और टैक्सी चालकों को दिल्ली सरकार ने 5,000 रुपये से दे के मदद की थी। आज भी हम ये निर्णय लिया है कि हम दिल्ली सरकार सभी ऑटो चालकों और टैक्सी चालकों को 5,000 रुपये देकर मदद करेगी, ताकि उन लोगों को इस आर्थिक तंगी के दौर में थोड़ी सी मदद मिल सके।
कांग्रेस पार्टी चाहती है कि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सुनियोजित लॉकडाउन लगाया जाए, साथ ही गरीब परिवारों को आर्थिक मदद भी की जाए। कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल नए संसद भवन पर हो रहे खर्च को लेकर सरकार पर तंज कसते हुए कहते हैं,
लॉकडाउन ऐसा कीजिए कि रोज का लेके रोज खाने वाला आदमी, जो मजदूर है, जिसके पास आमदनी नहीं है, जिसके पास बैंक बैलेंस नहीं है, जिसके पास घर में पूरे साल का या महीने का धान राके नहीं रखा गया है, उनके लिए जो हमारी न्याय योजना थी, जहां उनकी चिंता थी, उसी तरह 6,000 रुपये उन लोगों के अकाउंट में डाल। आप विस्ता प्रोजेक्ट में 20,000 करोड़ डाल रहे हो, आपका नया आलिशान सुल्तान घर बनाने के लिए। मैं सांसद हूं, हम ये संसद गृह में बैठते हैं, क्या जरूरत है नई पार्लियामेंट बनाने की? वही पैसे आप लगाइए और उन गरीब को 6,000 रुपये हर महीने दे दीजिए।
कोरोना संकट से निपटने के लिए भारत को कई देशों से मदद मिल रही है, ब्रिटेन भी उनमें से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रितानी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच मंगलवार को एक वर्चुअल बैठक हुई। इस बैठक के दौरान मदद को बढ़ाने का वादा ब्रिटेन ने किया। बैठक के दौरान दोनों देशों ने आपसी व्यापार को 2030 तक दोगुना करने पर सहमति जताई। इस बारे में विदेश मंत्रालय के अधिकारी संदीप चक्रवर्ती बताते हैं।
The two-way trade between India and United Kingdom in 2019-20 was of the order of $15.4 billion. Although it has been rising in the recent years, the figures do not reflect the true potential of trade between the world's fifth and sixth largest economies. Moreover, we believe that Brexit has provided tremendous new opportunities for both countries. To seize them and unlock the true potential, the two leaders announced their intent to negotiate a comprehensive and balanced FTA, including consideration of an interim trade agreement for delivering early gains. The ambition, the two leaders agreed today, was to double, more than double, the bilateral trade by 2030.
और अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां चुनाव के बाद हिंसा हो रही है। सत्ता में लौटी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच खूनी संघर्ष में कई लोगों की जान चली गई है। भाजपा का आरोप है कि राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं पर सुनियोजित हमले हो रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को राज्य का दौरा किया। उन्होंने हालात को गंभीर बताते हुए कहा,
चुनाव के नतीजों के बाद जो घटनाएं देखने को और सुनने को मिली हैं, वो हमें हतप्रभ करती हैं, चिंता में डालती हैं, क्योंकि शायद ऐसी घटनाएं भारत के विभाजन के समय मैंने सुना था, लेकिन उस आजाद भारत में अब चुनाव के नतीजों के पश्चात इतनी असहिष्णुता, इनटॉलरेंस हमने आज दिन तक नहीं देखा है। कार्यकर्ताओं पर जो प्रहार हो रहा है, उसको व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए और उन कार्यकर्ताओं के साथ इस विपत्ति काल में खड़े होकर के प्रजातांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है।
हिंसक घटनाओं से नाराज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि राज्य को पश्चिम बांग्लादेश बना दिया गया है।
बंगाल को बांग्लादेश बनाने का साजिश चल रही है, पश्चिम बांग्लादेश। मुझे लगता है कि पश्चिम बांग्लादेश लगभग बन चुकी है। इतनी हत्याएं, इतनी बलात्कार, इतनी लूट खसोट, कहीं कानून व्यवस्था का नामो निशान तक नहीं है। गांव से शहर तक कहीं पर लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं है। लगभग 20 के करीब हत्याएं हो चुकी है।
राज्य में जारी हिंसा की कांग्रेस पार्टी और वामपंथी दलों ने भी निंदा की है। इस बीच तृणमूल नेता ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के रूप में आज अपना तीसरा कार्यकाल शुरू कर रही हैं। वहीं भाजपा हिंसा के विरोध में आज धरना प्रदर्शन कर रही है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify या फिर जहां आप podcast सुनते हैं, वहां हम हैं।